रुकू नंबर 3, 22 से 25, गुमराही फैलाना। गौर से सुनिएगा, बड़ा नया लफ्ज़ है आपके लिए। गुमराही फैलाना गुनाहे जारिया है। आज तक क्या सुना है? सदका जारिया। और जब कभी किसी का मैसेज आगे करें बगैर सोचे समझे, जब कोई फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ आगे करें, और जब किसी फिल्म और गाने या बेहुदा चीज़ को आगे रिकमेंड करें, इस जुमले को याद रखिएगा। हिदायत फैलाने वाले को जैसे हिदायत का अजर है ना फैलाने वाले का, और उसकी नेकियों में उसका हिस्सा डल जाता है, इसी तरह गुनाहों की बात को आगे करने वाले का वो भी गुनाह भी मल्टीप्लाई हो जाता है। हो सकता है आप कुरान पढ़ के छोड़ दें वो सब गुनाह, लेकिन जिनको आपने बताई अब उनका क्या होगा? एक ऐसा करंट अकाउंट और चलता ही जाता है कि जो आपके बाद भी चलता रहेगा। तो आज से जो भी काम को ऐसा गलत किया उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। मुझे किसी की बात याद आ गई, मतलब कोई अपना सुना रही थी कि उन्होंने पहले हिजाब नहीं किया हुआ था, तो ज़ाहिर है कई जगहों पे वो होती थी, फिर जब उन्होंने हिजाब किया तो वो कुछ सोशल वर्किंग टाइप की सिस्टर थी, तो अब उनकी वीडियोज़ और उनकी तस्वीरें कई जगह थी, तो वो कहती हैं कि फिर मैंने हर प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्लीज़ डिलीट माई वीडियोज़ क्योंकि नो आई एम हिजाबी। और जब इंशाल्लाह हिजाब से निकाब के मरहले पे जाएंगी तो वो हिजाब वालों को भी कह देंगी कि अब ये भी उतार दें। तो इंसान को हमेशा हर दिन पहली चीज़ से बेहतर हालात में जाना चाहिए। आइए बातों को देखते हैं। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सब का माबूद सिर्फ अकेला अल्लाह है। आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दिल मुनकर हैं, वो सब खुद तकब्बुर से भरे पड़े हैं। तकब्बुर को दिल से खुर्चिए, और तकब्बुर इबलीस की भी आदत थी, खुद को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा। जो मैं कर सकती वो कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकती हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। और कई दफ़ा हम तकब्बुर ऐसे रवैये जो है ना वो अच्छे कामों के नाम पे कर रहे होते हैं। तो फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं वह खूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं। इसका नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही इनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। अल्लाह में अपने भी गुनाहों के बोझ से और हमारी वजह से जो दूसरे बुराई में गए उससे भी बचा दे। ईमान से मतलब एक आयत है सूरत नहल 22, तकब्बुर वाले दिल ईमान से महरूम रहते हैं। करना क्या है? तकब्बुर से बचना है, आजजी इख्तियार करनी है, सॉफ्टनेस, नरमी। ये कुछ ज़ाहरी बातें नहीं होती, ये अंदर दिल का झुकाव होता है, और किसी की गुमराही का बायस नहीं बनना। और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान कर दे। अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रवोकिंग टॉपिक देखिएगा, रुकू नंबर 4, आयत 26 से 34, खबर जहन्नुम का गढ़ा या जन्नत का बाग है। अल्लाह के नबी के एक हदीस से पॉइंट अखज़ किया गया। قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ, ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا, آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارت کو جڑوں سے اکھیڑ دیا, اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں, اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے, جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے, آج تو کفار کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی. اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں, اس وقت وہ جھک جاتے ہیں یعنی سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے, کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے, بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. کہاں کی انٹری مل رہی ہے ان کو؟ جہنم کی انٹری. کسی ایسی جگہ کی انٹری مت مانگیے کہ جہاں جا کر گناہوں پہ شیئر ہو جائیں. آپ نے سنا ہوا انٹری ویزا, انٹری ٹیسٹ, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو دینے کے لیے کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا پیسہ لگا کے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کا ویزا لیتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے. اگر آپ کو ذرا سا ڈر ہوتا ہے نا کہ ان ملکوں میں گناہوں میں بڑھنے یا مجبور ہونے اور یا کسی وجہ سے آپ جہنمی ہو سکتے ہیں, تو اس انٹری ویزے کو کینسل کرا کے ایگزٹ لگوا لیں, بہتر ہوگا. دیکھیے ان جگہوں پہ جا کر رہنے کے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے, یا جہاد ہے قتال والا, تو یا جہاد ہے تبلیغ والا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ کرونا کے دنوں میں صرف وہ لوگ ادھر جاتے تھے جو بیچارے علاج کر رہے ہوتے تھے ان مریضوں کا, क्वारंटाइन सबके लिए था, डॉक्टर्स के लिए नहीं। पूरी दुनिया में रियलिस्टिकली देखें तो उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों में भेज कर दावा के मौके बनाए। आप सुनिए कि कुरान के नज़ूल के वक्त जो कैफियात थी, और कुछ लोग फोकस होकर सुन रहे होते थे, कुछ नहीं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया। आयत नंबर 30, और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं अच्छे से अच्छा। ये आप सीख लें जुमला, आप सूरत नाहल की आयत 30 को लिखें। आपसे लोग पूछेंगे ना, घर जाते हैं तो आपके घर वाले पूछते भी हैं कि नहीं क्या पढ़ के आई हो, तो आपने इसका अरबी तर्जमा याद कर रहे हैं, हुस्ना। आज का पारा कैसा था? हुस्ना भाई, रोज़ ही नहीं बनता। और सच बताएं, रोज़ हर पारे में नई खूबी आती है ना, तो ये अल्लाह ने आप जैसे प्यारे लोगों के लिए कहा। क्या कहते हैं? अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने भलाई की, इनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है, हमेश की वाले बागात जहाँ वो जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ तलब करेंगे वहाँ इनके लिए मौजूद होगी। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। वो जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ हों, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती की सलामती है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर ले। जाओ जन्नत में अपने इन आमाल के बदले में जो तुम करते थे। क्या खूबसूरत दिन होगा, वो ईद का दिन नहीं होगा? पीछे एक जम लिखाया था कि मौत का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन होता है। खुशियाँ मनाती, उछलती कूदती उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। अल्लाह हमें ईमान की मौत दे। इसके बरक्स कुछ दूसरे लोग क्या ये इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। इन पर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। बस इनके बुरे आमाल के नतीजे इन्हें मिल गए, और जिसकी हंसी उड़ाते थे इसने इनको घेर लिया। सिंपल सी आयतें हैं, अमल की बातें, आखिरत के इम्तिहान की तैयारी करनी है, अल्लाह ताला के अजाबों से डरना है, और हर लम्हे कोशिश करनी है कि खुद भी दिन ब दिन नेकियों में बढ़ें, और अपने साथ रहने वालों को भी नेकियों में आने की दावत दें। रुकू नंबर 5, 35 से 40, शिर्क करने के लिए बेबुनियाद जवाज़। वक़ालल्लज़ीना अशरकू, और हर दौर के मुशरिकों ने कोई ना कोई जवाज़, समझ रहे, रीजन्स, यानी रीजन्स रखी होती हैं, उन्हीं में से कुछ रीजन्स इधर पेश हो रही हैं। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, ना इसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। यही फेल इनसे पहले लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुंचा देना है। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा के लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बाज़ लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह हमें उनमें डाल दे, और बस पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद ज़मीन में चल फिर कर देख लो, छुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। गो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और न इनका कोई मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला ज़िंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, ज़रूर ज़िंदा करेगा, ये इसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज़ में इख्तलाफ करते थे इसे अल्लाह साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान लें। और अल्लाह की कुदरत देखिए ज़रा, उसकी ताकत को फील कीजिएगा। हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना काफ़ी होता है कि हो जा, और वो हो जाती है। फ़ाइन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन यकूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हमारी दुआओं की कबूलियत पे कुन कहते हैं। अल्लाह सब बीमारों को सेहत दे दे, सब दुखियों के दुख दूर कर दे। इस वक्त जितने लोग यहाँ हमारे साथ सुन रहे हैं, घरों से सुन रहे हैं, और जो बाद में सुनेंगे, और जो साथ सुनवा भी रहे हैं और सुनवाएंगे, या अल्लाह सब की नेक दुआओं पे कबूलियत का कुन कहते हैं। बीमारियों से दूर कर दे, परेशानियों से दूर कर दे, औलादों के गमों से बचा। और अल्लाह उम्मते मुस्लिमा का एक हिस्सा जो कट रहा है इस वक्त दुनिया में, या अल्लाह उनकी जान माल की कीमत जो है उसको जन्नत से कम पे ना रखना, और या अल्लाह उनकी उन शहादतों को हमारी आंखों के खोलने का जरिया बना दे। हमें भी वही ईमान अता फरमा। फेथ इन एक्शन, अपनी गलती तस्लीम करनी है, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान रखना है, अल्लाह ही से हिदायत मांगनी है। अल्लाह हमें इस पे तौफीक दे। अब आ गई वो आयत जिसका मैंने पीछे तस्करा किया था کہ اس صورت میں ہجرت کا تذکرہ ہے، اور اصل میں اب ذہن سازی ہے مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ لے جانے کی، اسی لیے تو شروع میں تھوڑا سا وقت لگاتی ہوں نا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، تو اس سے آپ کو صورتوں کا مزاج سمجھ آتا ہے کس حالات میں بات ہوئی. آؤٹ آف کانٹیکس باتیں تو بالکل بیکار ہوتی ہیں نا، تو قرآن کو کانٹیکس کے ساتھ سمجھیں گے نا، پڑھیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہت ساری گائیڈ لائن ایسی ملے گی جو کبھی آپ نے اس سے پہلے نہیں سوچی ہوتی. تو کیا فرمایا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت 41 سے 50، رکوع نمبر 6، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما سلموا، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے. دیکھیے دوسری دفعہ یہ بات آگے پھر آئے گی سورۃ الانبیاء میں، انبیاء صرف مرد تھے، تو یعنی عورت نبیہ نہیں، بس یہ سمجھ لیں، جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے. بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. آپ کو مجھے غور و فکر کی دعوت ہے. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ دے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے؟ بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور نہایت رحم والا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپ آتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. کون؟ فرشتے کپ کپ آتے ہیں، تو آپ کا میرا کیا کام ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہجرت کا تذکرہ، ہجرت آسان نہیں ہوتی، پیچھے بھی تھوڑی بات کی، کرنے کے بعد پیچھے نہیں دیکھنا، یہ پیغام بھی پیچھے آیا. آپ کو مجھے زندگی میں اگر اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیجئے، آگے چلیے. چلتے جائیں گے، تھوڑی ہی دیر کے بعد اتنے خوبصورت مناظر آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تلخیوں شکایتوں سے اٹھ کر جینا بھی ایک ہجرت ہے. ایک ہجرت آج کے دور کی ہے جو ہمارے دماغوں میں آتی ہے، اور ایک ماضی کی. تھوڑا سا اس کا تقابل آپ کو دینا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا اٹس نون، ایک شہر سے دوسری جگہ میں جانا اٹس ویری ایزی. آپ میں سے میں پوچھوں کہ امریکہ میں آپ جس وقت اٹلانٹا میں میرے ساتھ ہیں تو کیا آپ شروع میں ہی اٹلانٹا تھی؟ آپ کہیں گے نہیں. 90% لوگ کہیں گے ہم نیو یارک تھے، اور باقی میرا علیہ جو رہ جائیں گے وہ کہیں گے ہم کہاں ہیں سب سے پہلے مسلمان امریکہ میں؟ شکاگو. دیو نام لیں گے نا، وہاں رہے پھر ادھر آگے ادھر آگے، کوئی مشکل نہیں. آپ میں سے کسی کو کسی باہر کے ملک میں آئے کتنے سال ہوئے، کسی کو کم ہوئے، آپ سب جانتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ کا سیل فون نمبر بھی ایون وہی رہتا ہے. میں نے پچھلے 12-13 سال سے اپنا ناروے کا نمبر نہیں بدلا، اور میرا لیے آدھی دنیا کے پاس جن کو میں جانتی ہوں، ویسے ہی محاورتن کہہ رہی ہوں، سب کے پاس میرا نمبر بھی ہے. شوق فرمائیے، لے لیجیے، الحمدللہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کون سے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں. اچھا، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ آپ کا پوری دنیا میں چلتا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں چلا سکتے ہیں. آپ یہاں ایک شپر کو بلائیں اور وہ آپ کا سارا سامان بڑے پیار سے پیک کرے، اور آپ کے دوسرے ملک میں جانے سے پہلے وہاں وہ سیٹ کر دیں. از اٹ پاسبل؟ 100% پاسبل ہے. اتنی اتنی بڑی شپنگ کمپنی ہے، جدھر آپ نے چیز رکھی ہے وہ وہیں جا کے رکھیں گے. وہ پہلے آپ کی تصویریں کھینچتے ہیں، پھر پیک کرتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ذرا سماجی میں جائیے. یہاں جس ہجرت کی بات ہے، مکہ سے مدینہ کی بات کر لیں، حبشہ کی بات کر لیں، اس وقت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ویری ان نون. تو بالغ رب، آپ جب اس ملک سے نکلتے تھے نا تو کٹ آف، پیچھے کون جیا کون مرا نہیں پتا. آپ چلے گئے، پیچھے آپ کا گھر سارا ختم. جہاں تو لوگ وہ کیا سیل ایک لگاتے ہیں امریکہ میں، گراج سیل، سمجھ لو وہ موو ہو رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے نا. ان بیچاروں کے تو گھر بھی وہیں تھے. सब वहीं रह जाता था। अब जरा सा इसको दिल पे हाथ रखकर पूछिए, क्या आप आज के दौर में, जब के वो सारे हालात हों, हिजरत करने को तैयार हैं? और वो हिजरत भी अल्लाह के लिए। आज लोग पढ़ने के लिए हिजरत करते, शादियों के बाद बच्चियों की विदाई होती है, वो ससुराल के घर में चली जाती, मियाँ साहब की जॉब पे हिजरत है, बच्चों की तालीम पे हिजरत है, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए हिजरत है। याद रखिएगा, ये सारी हिजरतें एक तरफ और सिर्फ अल्लाह के लिए। आपका कोई घर बार ही नहीं है, जिधर बैठे वही घर है, उसके तो उतने ही घर होते हैं। लोग रोते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, हाय आपका घर किधर है, वो कोई उनके बहुत सारे घर हैं, हाय आप किधर है। लोगों का एक, ऐसे लोग जो अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ते हैं, उनका हर बस्ती में घर, हर जगह उनके प्यारे, हर जगह उनके घर वाले। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को अल्लाह ज़रबें लगा लगा कर नेमतें, प्यार मोहब्बत देता है। असल बात यह है कि आप अंदर से सच्चे हो जाएं। करना क्या है, हर उस चीज़ और आदत से हिजरत करनी है जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं। नियत करते हैं हिजरत के रास्ते की मुश्किलात पे सब्र करना है। कभी किसी साहबी को हमने रोते नहीं देखा होगा, हाय क्यों छोड़ा आया, हम ज़रा सा कुछ छोड़े थोड़े दिन में वापस कर लेते, ना ना ना, नहीं नहीं मुझसे नहीं, उसके बगैर आ जाता। कायनात से आजिज़ी का सबक सीखना है। अल्लाह आपके मेरे लिए हिजरतों के रास्ते आसान कर दे। आगे है रुकू नंबर 7, 51 से 60। हर नेमत अल्लाह की अता करदा है। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वो अकेला है, बस तुम सब मेरा ही खौफ रखो, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है और इसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो उसी की तरफ नालाओं फरियाद करते हो। सोचिए, नालाओं फरियाद, नाला पता क्या होता है? नाला या नीलू नीलन, रोना, रातों को रोना। लोगों ने तो परफ्यूम्स के नाम रखे हैं ना, मेड नाइट मस्क, लेकिन हकीकत है कि वो आंसू जो आधी रात में अल्लाह के खौफ से निकल आए, वो उस मस्क से भी ज़्यादा खुशबूदार होता है। ये रातों के आंसू दिन में बंदे को हंसाते हैं। ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनिए, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो इसी की तरफ नाला और फरियाद करते हो, और जहाँ इसने वो मुसीबत तुमसे दूर कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकत है, लगता नहीं कि चोरी पकड़ी गई। अल्लाह को मेरा पासवर्ड पता चल गया, मेरा फ़ोन खुला रह गया। अल्लाह हमारे अंदर के एक एक बटन, एक एक स्विच ऑन एंड ऑफ को जानता है, क्योंकि अल्लाह यालमु मन खलक वहुव लतीफुल खबीर। सूरत मुल्क में अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि हमारी दी हुई नेमतों की ना शुक्री करें, यानी और जियो, चलो और ना शुक्र हो, जियो ज़रा और मेहनत करो अब इस दुनिया में खपने की, ताकि हम तुम्हें इकट्ठा ही पकड़ लें। अच्छा, कुछ फ़ायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम ही हो जाएगा, और जिसे जानते बूझते भी इस नहीं, इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोज़ी में से मुकर्रर करते हैं। वल्लाह तुम्हारे इस भुगतान का सवाल तुमसे ज़रूर किया जाएगा, और वल्लाह सुबहान तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इनमें से जब किसी को बेटी के होने की खबर मिलती है तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है। इसको दिल के कानों से सुने, क्योंकि हम में से हर एक बेटी ही है, और हर बेटी वाला भी सुने, यानी हर मर्द भी सुने, अक्सर की बेटियां तो होती हैं ना, और हर बहन वाला भी सुने यानी भाई, और हर बीवी वाला शोहर भी सुने, यानी मुराद है कि इस आयत को हर औरत और हर मर्द को सुनना है। और जो अल्लाह का इसमें पैगाम है ना, दो दफ़ा ये मौजू आना है, पीछे तस्करा हल्का सा गुजरा था, अब यहाँ आ रहा है, फिर आगे सूरह ज़ुख़रफ़ में भी आएगा कि बेटियाँ अच्छी नहीं होती, दुख्तर कुशी। अल्लाह अकबर। इनमें से जब किसी को लड़की के पैदा होने की खबर दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से वो लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या इसे मिट्टी में दबा दे, यानी वो बेटी ना हो गई कोई गंदगी की पोटली है कि इसको कहाँ ले लेके फिरूं। आह, क्या ही बुरे फैसले करते हैं। आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो वो बहुत ही बुलंद सिफत है, वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, नहल 60, आखिरत का इनकार बुराइयों में धकेल देता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, मुशरिक मुआशरे दुख्तर कुछ होते हैं, دختر بیٹی کو کہتے ہیں کوش مارنے، بیٹیوں کے قتل والے۔ آپ کو تک اللہ کے نبی جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں بیٹیوں کا قتل نون تھا، ویری کامن، پیپل آر ویری فیملیئر وتھ دیٹ۔ بلکہ ایک صحابی نے تو کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں 70 سے زیادہ بچیوں کو قتل کیا، یعنی پروفیشن تھا۔ جیسے آج سوشل ورک کرتے ہیں نا لوگ، غریبوں کی مدد کرنا، جیسے عیدی ٹرسٹ کی بات کر لیں یا کسی بھی ملک کا کوئی بھی ایسے ریڈ کراس، کوئی بھی ایسی نا، تو وہاں اس معاشرے میں کچھ لوگ تھے تو وہ بیٹیاں چھڑاتے تھے لوگوں سے کہ تم قتل نہ کرو، ہمیں دے دو، اور کچھ اس سے اپوزٹ بھی تھے جو اپنی بھی اور دوسروں کی بھی مارتے تھے، لاؤ ہم تمہاری مار کے آتے ہیں۔ جہالت کیسے بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے، ایک صاحب بھی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بعد میں پوچھا آپ کو کیا ہوتا، کہا مجھے اپنی وہ دور جاہلیت والی بچی یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کو فوراً تو نہیں، لیکن کچھ سال کی جب ہوئی تو میں نے سوچا کہ نہیں بس اب اس کو جلدی سے ختم کروں، برادری کا ڈر تھا، خاندان کا ڈر تھا کہ نہ بیٹی کو مارا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا یہ خاندان والے کیا کہیں گے، اس نام پہ کئی اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے۔ تو کہتے میں لوگوں کی باتیں سن کے تھک گیا، آخر میں نے ایک دن سوچا کہ آج اس کا کام ختم کروں، اور وہ بچی اتنی ہو گئی تھی کہ ساتھ چلتی پھرتی، ابا کہاں جا رہے، ابا کہاں جا رہے، بیٹا جنگل میں جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بیٹی اپنے میرے ساتھ چل پڑی۔ پھر میں نے وہاں جا کر مٹی کھودنی شروع کی تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگ گئی، اور جب وہ قبر کھودی تو میں نے اس کو اس میں دھکا دیا، اور وہ بچی مجھے پکاری ابا ابا ابا، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنی بچی کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہوئی آوازیں یاد آتی ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ہر ایک سوچے اپنے اوپر رکھ کر، تو آج کے وقت کبھی مت کہیے گا کہ بیٹی بوجھ ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ نہیں ہونا، خوشی ہو یا غم صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جتنی بڑی نعمت ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج ہمارے اپنے ملکوں میں ارد گرد دیکھ لیجئے بیٹیوں کو ظاہر بھی کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 500 کا الٹرا ساؤنڈ کرا لو اور 50,000 بچا لو، یہ بامبے کی ایک سڑک پہ لکھا ہوا کئی سال پہلے کی خبر ہے، یہ کیا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لو اگر بیٹی ہے تو ابارشن کرا لو، 50,000 کا جہیز بچے گا، آج وہ 50,000 میرا لے 50 لاکھ میں بدل چکا ہوگا۔ کہاں سے کھاتی ہیں بیٹیاں؟ اپنے نصیب سے کھاتی ہیں، اور اکثر دیکھیں یہ تانے دینے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، مردوں کو پرواہ نہیں، سسر کو کوئی پرواہ نہیں، ساس صاحبہ کو مسئلہ، یہ بیٹیاں پیدا کری اس کو طلاق دے دو اب اگلی لے آؤ، یعنی یہ مشین خراب ہے، اس کا رزلٹ خراب ہے، نہیں ایک مشین خرید کے لاؤ اور بیٹے پیدا کراؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ سائنس کی زبان میں بیٹا ہو کے بیٹی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اللہ تو کرتا ہے، لیکن میل سپرمز کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ایکس ایکس اینڈ ایکس وائی کا کمبینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے، اور خاص طور پہ آج ویسے نہ کوئی مارے لیکن ابارشن تو عام ہے، اور ایک اور بھی بیٹی کا قتل ہے، اس کو بیٹا بنا دینا، اس کی حیا ختم کر دینا، اس کی اچھی تربیت نہ کرنا، اس کو بالکل ایک دوسرا مرد بنا کر، ایک بیٹا بنا کر ہم بیٹیاں پال رہے ہیں، اس لیے گھر نہیں بن رہے، دو مردوں کا گھر کیسے نبھے، نہ مزاج میں نرمی ہے، نہ عزت ہے، نہ اس کی محبت ہے، نہ کیئر ہے۔ آخر کو نمبر 8 آیت 61 سے 65، شیطان کا دھوکہ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ جو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہیں، یہ بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے۔ مکہ میں ایک قبیلہ ایسا تھا جو پوجا کرتا تھا، مطلب فرشتوں کے بارے میں ان کا گمان تھا جی کہ یہ لڑکی ہیں، فیمیل ہے، فیمینین ہے، کچھ اسی قسم کی بات ہے اس کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنے لیے ناپسند رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اور فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں، واللہ ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ کون ہے وہ؟ ماشاءاللہ آپ لوگ لسنرز सुन रहे हैं, गौर से सुनते हैं, और आप सब जितनी मोहब्बत से सुनते हैं मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। यही दुआएं घरों से सुनने वाले हर उस साथी के लिए हैं जो पूरे प्रोटोकॉल इज्जत के साथ इसको सुन रहा है और इसको बेहतरीन तरीके से जज करने की कोशिश कर रहा है। एक आयत है ईमान से मतलब नहल 64, मोमिन कुरान से हिदायत लेकर अल्लाह की रहमत को पा लेता है। अल्लाह मुझे आप उन्हीं लोगों में रखे। अमल के नुक्ते, ज़िंदगी को एक ख़ास वक्त तक की मोहलत जानना है, एनी टाइम बाउंड। हमारे पास एक चॉइस है बस, इसके बाद सब ख़त्म। कुरान की हिदायत और रहमत समेटनी है। अब आगे कुछ जानवरों की बातें हैं, रुकू नंबर 9, 66 से 70। जानवरों में भी हमारे लिए निशानी है। वइन्ना लकुम फिल अनाम इला इबरा, आपने इस रुकू को सुनते वक्त इफ्तारी का मेन्यू सेट नहीं करना। खाने पीने की चीज़ें कुरान में है, तो कैसे खाना पीना गुनाह हो सकता है? दूध की बात आने लगी है, ज़रा सुनिएगा। तुम्हारे लिए तो चौपायों में भी बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है इसी में से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है, यानी इजीली डाइजेस्टेबल है, हजम के काबिल है। और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोज़ी भी। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली, या मक्खी भी आ गई, इंग्लिश वाली बी के उर्दू वाली हनी बी के हनी बी बी जी। बड़ा प्यार आता है मक्खी पे, यकीन करें, इसको जब आप कभी डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आपका दिल करेगा मैं मक्खी होती। हजरत आयशा कहा करती थी ना, हाय मैं चिड़िया होती, उड़ती चरती चुगती मर जाती और मेरा हिसाब ना होता। मैं भी कहती हूँ अल्लाह हमें ये कुरान का पानी ज़िंदगी में ना होता तो फिर शहद की मक्खियाँ ही अच्छे थे। एक चम्मच शहद देकर सारी ज़िंदगी की कोशिशों के बाद मर जाता है। हिसाब बड़ा सख्त है, अल्लाह महासिब ना हिसाब है यसीरा। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची छतों में अपने घर यानी छतें बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहे। इसको हाईलाइट करिएगा। या आप जिन रास्तों से चल के आते हैं ना इल्म की तलब में, ये अल्लाह आपके लिए आसान कर रहा है और अल्लाह और भी आसान करता रहे। जो नहीं आते उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और जो आते हैं उनके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। इनके पेड़ से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। इंशाल्लाह रुकू के एंड पे गौर व फिक्र करते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ही ने तुम सबको पैदा किया फिर तुम्हें फौत करेगा। तुम में से बस ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं। बुढ़ापा, अर्जल उम्र, बड़ी मुश्किल उम्र है, अल्लाह आसान कर दे सबके। जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि सब कुछ जानते बूझने के बाद भी न जाने। बेशक अल्लाह ताला दाना और तवाना है। शहद की मक्खी की बात हुई, आप और मैं शहद की मक्खी के बारे में बहुत कम जानते हैं। शहद की मक्खी एक मलका क्वीन और बाकी वर्कर्स काम करने वालियाँ, इतना सिस्टमेटिक सिस्टम है इनका कि जिसको आप कह सकते हैं एक फ्रेज में कि टीम वर्क एज ड्रीम वर्क। कायनात को शहद देने के लिए शहद की मक्खी कितना काम करती है? 50,000 उड़ाने चलती है। एक एक फूल का रस लाकर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक छोटी चम्मच टी स्पून शहद बनाकर मर जाती है। और फिर वो जो लाती हैं, कौन फूलों से रस ला रही, कौन छज्जा बना रही, कौन उसमें शहद टपका रही, कोई एक तीसरी है वो उसके ऊपर वैक्स लगा रही, चौथी उस पर पंखे झल रही, ठंडा कर रही, उसके हेक्सागोनल कोने बन रहे, और ये सब बेचारी औरतें करती हैं, आप जैसी औरतें। लेकिन वो आगे से खप के ये नहीं कहती, सारे काम मैं करती हूँ, आप तो सोए ही रहते हैं। आप कुरान में देखेंगे अभी शहद की मक्खी आ गई है ना, आगे सूरत नमल में चींटियाँ भी आनी हैं, सब फीमेल। तो खुश हूँ अल्लाह ने आपको मुझे औरत बनाया। शहद की मक्खी अपनी छोटी सी उम्र में इतना काम कैसे कर लेती है? क्योंकि शिकायतें नहीं करती, तो शिकायत से ऊपर उठकर काम करती है। सारी ज़िंदगी अपने हिस्से का काम करती है, किसी से सिले की तवक्को नहीं रखती, नफ़ामंद है, और नफ़ामंद बनने के लिए शिकायती रवैयों से ऊपर उठना पड़ेगा। करना क्या है? काम करने को अपना शुआर बनाना, इंसानियत के लिए नफ़ामंद बनना, बा मकसद ज़िंदगी गुजारनी है। अब अल्लाह ने इन आयतों में दो चीज़ों को साथ जोड़ा, शिफा के लिए कुरान और शहद। जब शहद की मक्खी इतना काम करे, टीम वर्क करे तो शहद मिले, तो क्या आपको मुझे कुरान के लिए टीम वर्क नहीं करना? ये इस वक्त भी जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है? मैं तो कभी छुप सकूँ तो आपसे भी छुप जाऊँ, मेरी आवाज़ को बदल दे तो बदल दे, लेकिन यकीन करें ये सारा काम टीम के साथ हो रहा है। हर शोबे की अलग टीम, हर काम के अलग माहिर, और ये जो कुछ आपको स्क्रीन से लेकर कानों तक सुनने से लेके बात में रीप्लेज और इधर और उधर, नेकियां भी तभी फैलती हैं जैसे शहद की मक्खियों की तरह काम करें। तो बहरहाल शहद की मक्खी जैसे ही अल्लाह में बना दे।